नमस्कार भारत, 8 नवंबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज दोपहर तक मिलेंगे अधिकतर नतीजे।
विकास हो, सरकार अच्छा बने, स्थिर सरकार बने,
तब तो सोच रहे हैं कि लालू यादव आवे, अब भाजपा न आवे तो बढ़िया है।
भाजपा आवेगा, नया बिहार बनेगा, नया देश, नया आदमी सब दम चकाचक करेगा, और क्या होगा।
जीत का दम भर रहे हैं हर पार्टी के नेता, लेकिन एहतियात के साथ।
ये महागठबंधन का चुनाव सिर्फ नहीं रहा, और हम एक अपार बहुमत की ओर हर हाल में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने की कोशिश करें।
केंद्र का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री को 1.5 साल के जो हमारे कार्यकाल है उससे जोड़ना उचित नहीं होगा।
वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना जारी, समाचार पत्रों की समीक्षा और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज दोपहर तक आ जाएंगे। इस मतगणना में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 3,450 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। 5 चरणों में हुए इस चुनाव में केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का सामना राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन से है। म्यांमार के लोग मतदान की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यहां 50 साल से भी ज्यादा पुराना सैन्य शासन खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति दायन सायन ने वादा किया है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। उम्मीद की जा रही है कि आंग सान सूची के नेतृत्व में विपक्षी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इसमें बहुमत हासिल करेगी, लेकिन संसद की 1/4 सीटें पहले से ही सेना के लिए सुरक्षित हैं, इसलिए मानवाधिकार संगठन इन चुनावों को मूल रूप से ही दोषपूर्ण मान रहे हैं। बुरुंडी की सरकार ने बंदूकधारियों से अपने हथियार छोड़ने की जो समय सीमा रखी थी वो बीत चुकी है। विदेश मंत्री एलन न्यमित्वे ने बीबीसी को बताया कि राजधानी बुजुम्बुरा में लोगों को स्थिति के और हिंसक होने का डर है। अप्रैल में राष्ट्रपति नंकुरुनजीजा के तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के विरोध में ये हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें अब तक करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। बुरुंडी जा रहे अमेरिका के विशेष दूत टॉमस पेरियेलो ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
We've seen the kind of rhetoric from both sides and particularly some incendiary speeches from top government officials.
हमने दोनों पक्षों की तरफ के भाषण सुने हैं, खासतौर पर सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भड़काऊ भाषण भी, जो वाकई हिंसा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब वक्त है कि दोनों पक्ष लोगों को हिंसा की कगार से वापस ले आएं और इसका राजनीतिक हल ढूंढें। ये थे टॉमस पेरियेलो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बर्लिन में एक अप्रवासी विरोधी जुलूस में बाधा डालने वाले प्रदर्शनकारियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस जुलूस को रोकने की कोशिश करने वाले करीब 40 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस जुलूस का आयोजन द अल्टरनेटिव फ्योर डॉयचलैंड नाम की पार्टी ने किया था। इसमें करीब 5,000 लोग शामिल थे। सीरिया और अफगानिस्तान में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के चलते करीब 7.5 लाख शरणार्थी इस साल जर्मनी पहुंचे हैं। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में पिछले हफ्ते एक नाइट क्लब में लगी आग से घायल 9 और लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 41 हो गई है, जबकि 100 लोग अभी अस्पताल में हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस क्लब में लगी आग के कारण रोमानिया के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ की जनता में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत रोष है और लोगों का मानना है कि इस क्लब में सुरक्षा नियमों की उपेक्षा की गई। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सोनी का। भारत में सियासत के हिसाब से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार में लंबे चुनाव प्रचार और 5 चरणों के मतदान का नतीजा अब से कुछ घंटों में निकलने वाला है। मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी नींद उड़ी हुई है। पटना से पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
बस अब कुछ घंटों की ही बात है जब महीनों से बिहार को लेकर चल रहा अटकलों का बाजार थम जाएगा। आखिरी चरण के मतदान के बाद से ही दोनों प्रमुख गठबंधन के नेता और समर्थक ताल ठोकते रहे हैं कि उनकी ही जीत होगी। जनता में भी चर्चा गर्म है। विश्लेषक अपने दावे कर रहे हैं। चुनावी गणित समझाने वाले बता रहे हैं कि इस जाति ने इसको वोट दिए, इतना प्रतिशत इसको जा सकता है, कौन जाति किसके खाते में जाएगी। कोई कह रहा है कि मांझी भाजपा के तारणहार होंगे, तो कोई ये तर्क दे रहा है कि लालू और नीतीश की तो आंधी चल रही है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इन सभी चर्चाओं और अटकलों को अगले कुछ घंटों में ही विराम लगने वाला है। 5 चरणों के मतदान और कई महीनों से चल रहे चुनाव प्रचार के बाद अब बिहार का रिजल्ट आउट होने वाला है। नेताओं के साथ साथ जनता भी बेताब है जानने के लिए बिहार का नतीजा।
हम लोगों के लिए भी बेचैनी की रात है। हम लोगों ने भी चाह रहा है कि विकास हो, अच्छा हो, सरकार अच्छा बने, स्थिर सरकार बने।
सब तो सोच रहे हैं कि लालू यादव आवे, समझे, अब भाजपा न आवे तो बढ़िया है, भाजपा नहीं आवे तो बढ़िया है। हम सोच रहे हैं कि लालू यादव आवे तो राज्य को सही पाल से चलावे, गरीब को दे के, गरीब को मुंह में रोजी दे खाने के लिए।
भाजपा आवेगा, नया बिहार बनेगा, नया देश, नया आदमी से एकदम चकाचक करेगा और क्या होगा, विकास करेगा, हम लोग के रोजगार देगा, पैसा देगा रोजगार करने के लिए। कह रहा है जो 60 आदमी के दे दिए हैं,
धंधा बने से चले, स्थिर जगह कोई तंग न करे, बढ़िया से कमाए खाए, सरकार कोई भी हो, सुरक्षित चाहते हैं बस।
चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा है और माना जा रहा है कि 1-2 घंटों के अंदर रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जल्द ही बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। अपने अपने दावों के बीच दोनों प्रमुख गठबंधन के राजनेताओं के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता जो लंबे समय से पटना में थे, वे अब दिल्ली में हैं और माना जा रहा है कि नतीजों का रुख देखकर उनका भी रुख पटना की ओर हो सकता है। दूसरी ओर अपनी जीत के दावे के बीच महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी भी साफ दिखती है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आक्रामक रुख अपनाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव 190 सीटों का दावा कर रहे हैं।
190 से हम नीचे गिरने वाले नहीं है, हमारा 190 होगा। और भाजपा का इसके बाद सरकार बनाने के बाद जन आंदोलन खड़ा करेंगे। भारी बेचैनी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास करके, बिल्कुल लगता है जो कोमा में चले गए। बेचैन है कि क्या उपाय कर रहे हैं, क्या उपाय कर, यहाँ कोई उपाय, ये बिहार है, लगने वाला नहीं है, हार गए हो जाओ।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसे भरोसा है कि जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। क्या है भाजपा के भरोसे की वजह? बिहार भाजपा के अध्यक्ष मंगल पांडे,
कोई कारण नहीं है कि नतीजा हमारे अनुमान के अनुरूप नहीं आएगा। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए ही मतदान किया है और हमें सेवा करने का अवसर दिया है।
दावे प्रति दावे के बीच जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन सा गठबंधन दिवाली से पहले दिवाली मनाएगा और कौन सा गठबंधन मायूसी के अंधकार में डूबेगा। पंकज प्रियदर्शी, BBC पटना।
बिहार में चुनावी नतीजे आने से पहले जहां नेताओं की धुकधुकी लगी है, वहीं राज्य के प्रशासनिक अमले के लिए भी आज का दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं है। मतगणना के लिए राज्य में क्या और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुनिए सीटू तिवारी से।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार यानी 8 नवंबर को आ जाएंगे और राज्य के सभी जिला मुख्यालय के 39 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले गिनती जो है वो पोस्टल बैलेट्स की होगी और तकरीबन 8:30 बजे EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर मतगणना केंद्रों की बात करें तो हर मतगणना केंद्र पर 14 टेबल लगाई गई हैं। इन 14 टेबल के अतिरिक्त 1 टेबल पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के दावे किए गए हैं। हर मतगणना केंद्र पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। सुरक्षा में केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतगणना स्थल के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के औचक निरीक्षण के लिए भी केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से मतगणना प्रेक्षक जो हैं वो तैनात किए गए हैं। पटना की अगर बात करें तो यहाँ पे 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनके मतों की गणना जो है वो पटना के बोरिंग रोड स्थित एन कॉलेज में होगी। सबसे पहले पटना में मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा जो 18 राउंड के बाद आ जाएगा और सबसे आखिर में आएगा दीघा विधानसभा क्षेत्र का जो 30 राउंड के बाद आएगा। बता दें कि राज्य के सभी मतगणना केंद्र के पास मीडिया सेंटर बनाए गए हैं ताकि हर राउंड के नतीजों की जानकारी मिल सके। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है हर मतगणना केंद्र में, जिसका एक स्पीकर मतगणना कक्ष के अंदर है जबकि दूसरा जो है वो मतगणना कक्ष के बाहर है। इसके अलावा हर मतगणना हॉल में 4 वीडियोग्राफर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सफाई, पेयजल, अल्पाहार, सुरक्षा व्यवस्था, इन सबको लेकर के जो आवश्यक निर्देश होते हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्रों के बाहर डिस्प्ले स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं ताकि आम लोग जो हैं वो वहां से जानकारी जो है वो ले सकें। इन मतगणना केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की मनाही होगी। इसके अलावा कोई भी नशीले पदार्थ, पान, गुटखा आदि जो है वो यहाँ पर नहीं ले जा सकते। अनुमान है कि दोपहर 1 बजे तक ज्यादातर नतीजे आ जाएंगे, जिसका इंतजार हम सबको है। BBC के लिए सीटू तिवारी, पटना।
NDA और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव से बात की और पूछा कि नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीदें हैं।
बिहार की जनता ने परिवर्तन करने के लिए मतदान किया है और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की महान जनता परिवर्तन कर दी है अपने मत के माध्यम से। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेतृत्व में बनने जा रही है।
मुख्यमंत्री कौन होगा आपका?
वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगी, मुख्यमंत्री हमारे बिहार के ही होंगे।
मान लीजिए अगर परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता है तो फिर आप लोगों का बिहार के लिए क्या प्लान होगा?
हमारा जो विकास का काम है और विकास की जो हमारी प्राथमिकता है वो जारी रहेगी बिहार के लिए।
तो जो भी नतीजा आता है क्या वो प्रधानमंत्री का करीब 1.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर भी एक मोहर होगी?
राज्य का ये चुनाव था, केंद्र का चुनाव नहीं है। उसको प्रधानमंत्री को उससे 1.5 साल के जो हमारे कार्यकाल है उससे जोड़ना उचित नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर सकारात्मक ही नतीजे आएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
भाजपा सांसद रामकृपाल यादव जो बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे थे। और आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा का क्या कहना है।
ये लोगों का चुनाव बन गया, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं इंगित करना चाहूंगा। ये महागठबंधन का चुनाव सिर्फ नहीं रहा और हम एक अपार बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं।
अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है, महागठबंधन को बहुमत मिलता है, उसके बाद भी आप लोगों के लिए सरकार चलाना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर लगातार सवाल भी उठाए गए हैं कि आगे आप लोगों का तालमेल कैसा रहेगा जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच।
जब हम साथ आने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों ने कहा, कह रहे साहब आप कभी साथ नहीं हो सकते। फिर कहा नीतीश जी ने को आप नेता नहीं मानेंगे। फिर कहा आप सीट पे आपके बीच में करार नहीं हो पाएगा, तकरार होगी। और फिर कहा, कह रहे साहब आप चुनाव मिलके तो लड़ ही नहीं। हमने सारे सवाल मीडिया में बगैर कोई खबर आए, किसी को कहीं सुगबुगाहट नहीं, सब कुछ खत्म कर लिया, आसानी से सुलझा लिया। ये बहुत खूबसूरती से चलेगा।
अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं, महागठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो महागठबंधन की बिहार के लिए क्या भूमिका होगी?
तब भी आप ये जान रहिए कि हम बिहार में डटे रहेंगे।
ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा, जो कह रहे थे हार हो या जीत मैदान में डटे रहेंगे। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के नेता भी महागठबंधन की सरकार बनने के दावा कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी।
बिहार की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम लोगों के गठबंधन की सरकार बहुत ही अच्छे बहुमत से बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स की भी बात लीजिएगा तो 8 एग्जिट पोल्स 8 तरह के आए हैं, उसमें से 6 में हमें बहुमत दिया गया। अगर उस हिसाब से भी ले लीजिए तो एग्जिट पोल्स का भी बहुमत हमारी सरकार बना रहा है।
लेकिन अगर नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते हैं तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड की क्या भूमिका होगी और क्या महागठबंधन का प्रयोग आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी दोहराने का प्रयास जारी रहेगा?
देखिए, मेरे ख्याल से अभी उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। अगर कुछ अदरवाइज होता है, उसके अनुरूप नहीं होता है, तब फिर बैठकर हम लोग हर हाल में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे।
हारे तो रचनात्मक भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। ये थे जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी, उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और जब मतगणना के नतीजे आएंगे तो जाहिर है कोई जीतेगा कोई हारेगा और जो जीतेगा बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएगा। लेकिन पटना में बैंड मालिकों का कहना है कि एडवांस बुकिंग बहुत कम नेताओं ने कराई है। पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
पटना के सुल्तानगंज इलाके में कई बैंड बाजे वालों के ऑफिस हैं। जश्न को परवान चढ़ाने वाले बैंड बाजे के ये ऑफिस लगन का मौसम हो न हो हर रोज जरूर खुलते हैं। बिना लगन के भी आज मतगणना के दिन इन्हें बुकिंग मिलने की आस है। लेकिन बातचीत में बैंड वाले बताते हैं कि हर बार की तरह इस चुनाव में भी एडवांस बुकिंग नहीं के बराबर हुई है। मतगणना का रुझान मिलने के बाद ही जीतने वाले उम्मीदवार संपर्क करना शुरू करते हैं। ऐसे में बैंड बाजे वालों को बिना बुकिंग के भी पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। लेकिन कुछ एक चुनावों में एडवांस बुकिंग भी हुई थी। सुल्तानगंज के जम्मू खान के मुताबिक उनका पंजाब बैंड भारत की आजादी से भी पुराना है।
1977 में उस वक्त जनता पार्टी जो था, तो उस टाइम में जो है हम लोग को पहले ही से लोग एकदम ये थे, रिजल्ट से पहले ही हम लोग को बुक किया हुआ था। बल्कि हम लोगों ने तो उसका ड्रेस भी बनवा लिया था जनता दल का, इतने श्योर वो लोग थे। और उसके बाद फिर जो है 1984 में, उसमें जो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, उस टाइम में भी लोग बहुत श्योर हो गए, रिजल्ट से पहले ही हम लोग की बुकिंग हो गई थी।
जीत का जश्न मनाने के लिए जो बैंड पार्टी जाती है उसमें अमूमन 15 से 20 साजिंदे होते हैं। बैंड के साथ एक ट्रॉली जरूर होती है जिस पर एक गवैया भी होता है। अब विजय जुलूस पर रोक रहने के कारण बैंड अमूमन पार्टी ऑफिस या फिर जीतने वाले उम्मीदवार के घर पर ही बसता है। आजकल नतीजों के पहले एग्जिट पोल के अनुमान भी काफी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में क्या एग्जिट पोल देखकर उम्मीदवार बैंड बुकिंग करवाने के लिए संपर्क करते हैं? इसके जवाब में बच्चा बैंड के ताजुद्दीन का कहना था,
ये एग्जिट पोल से सर कुछ नहीं होता है। फाइनल रुझान आने के बाद विनिंग कैंडिडेट होते हैं सर, उनके लोग जो सपोर्टर होते हैं वो लोग हम लोग के पास आते हैं और हमारी बुकिंग करके लेके जाते हैं।
बैंड है तो गानों की भी बात होना लाजमी है। महाराजा बैंड के मोहम्मद इकबाल के मुताबिक फिल्म अपना देश का एक गाना इस मौके पर सबसे ज्यादा बजाया जाता है।
उसमें तो सबसे ज्यादा करके बजता है सर जी, सुनो चंपा सुनो तारा। उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है हारे हुए पार्टी से। जैसे अब हमारी पार्टी जीती हुई है, सपोज कर लीजिए आप हारे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके दरवाजे पे जब बजेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा आउट फील होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ कह दे तो झगड़ा हो जाता है। कि सुनो चंपा सुनो तारा कॉमन है, यही बजता ही रहता है, लोग इसी को लाइक करते हैं। हाँ, देशभक्ति तो कॉमन चीज है, उसमें तो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सब तो कॉमन चीज है।
लेकिन गानों के जिक्र करने के बहाने ही मोहम्मद इकबाल आम आदमी की शिकायत भी सामने रख देते हैं। वे कहते हैं, जीतने के बाद नेता का ही गाना बजता है, पब्लिक का गाना तो कोई सुनता ही नहीं। मनीष शांडिल, BBC, पटना।
केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। वन रैंक वन पेंशन का फायदा 1 जुलाई 2014 से लागू माना जाएगा। इस बारे में हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता से बात की और पूछा कि क्या ये अधिसूचना पूर्व सैनिकों के लिए दिवाली का तोहफा है?
दिवाली का तोहफा भी माना जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी नज़र से देखें तो इससे लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सरकार ने अपनी तरफ से, अंग्रेजी में कहते हैं, यूनिलैटरल डिक्लेरेशन कर दिया है। और जो अभी के मुख्य पॉइंट्स हैं उस पर अगर टिप्पणी की जाए तो लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि पारिकर साहब इसी तरीके से घोषित करेंगे, क्योंकि इसमें काफी कमियां हैं। और हमारे सैनिक जो हैं भूतपूर्व, उन्होंने मेडल लौटाने का की कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो घोषणा होगी सरकार की उसमें इन्होंने अपने जो पॉइंट थे 5 सितंबर के, उसी के अनुसार एक दो जगह पर उन्होंने वो एक साल में रिकमेंडेशन देना था, जुडिशियल कमीशन ने वहाँ उसको 6 महीने कर दिया है। हर एक बात के ऊपर एक सर्विसमैन एसोसिएशन है, जो वेटरन्स कमीशन है, उसके इसके विरोध पॉइंट्स हैं।
क्या मेहता साहब, आप ये मानते हैं कि इससे पूर्व सैनिकों को कोई फायदा नहीं होगा?
नहीं, फायदा तो अवश्य होगा, लेकिन जो खास बातें जो कही गई थी, जिस तरीके से ये 2013 पर फिक्स किया हुआ है, ये 2014 पर फिक्स करना था, बेस लाइन है, जो प्रीमेच्योर रिटायरीज थे उसके बारे में कुछ गोलमोल सा नोटिफिकेशन हुआ है
जी। आपको लगता है इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी ये गतिरोध खत्म नहीं होगा?
बिल्कुल नहीं खत्म होगा। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक सर्विसमैन और वेटरन्स की में दो तीन अलग अलग भाग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीड ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग अभी तक जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे।
ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता जो बता रहे थे जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जारी रहेगा। और आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है बताने के लिए प्रगति सक्सेना ढेर सारे अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, आज जैसे कि आप जानते हैं सभी राष्ट्रीय अखबारों में बिहार में मतगणना छाई हुई है कि आज मतगणना होने वाली है और लोग कयास भी लगा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि वहाँ दफ्तरों में माहौल कैसा है और नीतीश जी के गांव में क्या माहौल है। ये सारी खबरें अलग अलग अखबारों में हैं। उसके अलावा जो खबरें सभी अखबारों में हैं मैं बता देती हूँ आपको, ये जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का के पैकेज की घोषणा की प्रधानमंत्री ने और कहा है कि ये पैकेज पूर्ण विराम नहीं शुरुआत है। सड़क पर सहनशीलता पुरस्कार वापसी के खिलाफ जो मार्च हुआ, मार्च फॉर इंडिया दिल्ली में अनुपम खेर के नेतृत्व में, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल जो प्रधानमंत्री मोदी से मिला और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति सहिष्णुता और स्वीकृति में लोगों से कहीं और देशों से कहीं आगे है। फिर केरल के नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस नीत यूडीएफ को बड़ा झटका लगा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसने एक पैठ बनाई है और वामपंथी पार्टी जो है वो जीत रही है। वन रैंक वन पेंशन पर अधिसूचना जारी कर दी गई है जिससे 25 लाख पूर्व सैनिक और दिवंगत सैनिकों की पत्नियां लाभान्वित होंगी। इसके अलावा जो खबरें हैं दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छी खबर है सहिष्णुता के बारे में, वो सब जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि सहिष्णुता जो है वो पिछले हफ्ते काफ़ी चलन में रहा है शब्द, तो उन्होंने बताया है कि सहिष्णुता के क्या क्या मायने हैं, कि फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी में क्या मायने हैं और महात्मा गांधी ने सहिष्णुता के बारे में क्या कहा है। फिर दिवाली पर हम खरीदेंगे 4,000 करोड़ की रोशनी, ये भी दैनिक भास्कर में खबर है कि देश में 90% रोशनी का सामान जो है वो चीन से आता है और भारत जो है वो नए नियम लाने वाला है इलेक्ट्रिक सामानों के लिए, जो गाइडलाइन जो है वो इस पे अंकुश लगाएगी चीन से जो सामान आता है हमारे यहाँ। फिर जो हमारे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 2 दिसंबर को, उनके बारे में एक छोटी सी खबर है कि जस्टिस ठाकुर ने माना था कि दिल्ली और केरल कोर्ट के फैसले जो हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। जस्टिस दत्तू ने 2 साल की बच्ची का कोर्ट में किया स्वागत, ये बड़ी दिलचस्प खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पालना घर शुरू हुआ है और उसकी जो पहली जो बच्ची आई वो 2 साल की बच्ची थी जिसका स्वागत जस्टिस दत्तू ने चॉकलेट और फूलों से किया। 5 ग्राम RDX भी सूंघ लेता है, मोदी की सुरक्षा में लगा रेक्स, यानी ये कुत्ता है जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगा है और बहुत ही कार्यकुशल है। दैनिक जागरण में एक खबर है कि 9 साल की मासूम ने जानने की इच्छा में फांसी लगाकर दी जान, ये पूर्वी दिल्ली का किस्सा है, दुखद किस्सा है। उसने अपनी माँ से बच्ची ने पूछा कि फांसी लगाकर क्या होता है और माँ ने उसको झिड़क दिया और उसने उत्सुकतावश फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। IIT प्रवेश परीक्षा में बड़े बदलाव की सिफारिश हुई है, दैनिक जागरण में ये बड़ी खबर है कि IIT काउंसिल ने विशेषज्ञों की समिति गठित की थी और उसने कुछ बड़े बदलावों की सिफारिश की है। हिंदुस्तान में खबर है कि दिल्ली में रातों की नींद छीन रहा है पटाखों का शोर, ये ध्वनि प्रदूषण पर रिपोर्ट है और ग्रीन टैक्स की वसूली और दिवाली से दिल्ली में कैसे रहा ट्रैफिक जाम।
बहुत 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 शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए। और जानते हैं आज देश दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इन चुनावों में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आज से ही कोंकण रेलवे लाइन को दोहरा करने का काम शुरू हो रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोंकण रेलवे का अनुमान है कि इस काम को पूरा करने में 5 साल लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो म्यांमार में आज नई सरकार के लिए वोट डाले जा रहे हैं। म्यांमार में 25 साल बाद अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता का दावेदार माना जा रहा है। क्रोएशिया में भी आज ही आम चुनाव के लिए मतदान होगा। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सबसे नया सदस्य है, जो 6 साल की आर्थिक मंदी से धीरे धीरे उबर रहा है। उधर यमन में आए भयानक तूफान के बाद अब प्रबल चक्रवात मेघ के आने की आशंका है। युद्ध की विभीषिका झेलते यमन में तूफान से 8 लोगों की मौत हो गई थी।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है खेल समाचारों का, आदेश कुमार गुप्त के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल भारत ने मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच को तीसरे दिन ही अपने नाम किया और मेहमान दक्षिण अफ्रीका को 108 रनों से करारी मात दी। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 218 रनों का लक्ष्य था, लेकिन रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की घूमती गेंदों के सामने उनके बल्लेबाज नौसिखिए साबित हुए। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज केवल 109 रन पर ढेर हो गए। हालात ऐसे थे कि दक्षिण अफ्रीका के केवल 4 बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुँच सके। स्टियान वान जिल ने सबसे अधिक 36 रन बनाए। एक समय तो दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट केवल 10 रन पर गिर चुके थे। पहली पारी में 43 रन बनाने वाले कप्तान हाशिम आमला तो रविंद्र जडेजा की गेंद को बाहर जाता समझकर छोड़ बैठे और गेंद उनका स्टंप ले उड़ी। उनके बल्ले से कोई रन नहीं निकला। एबी डिविलियर्स भी केवल 16 रन बनाकर अमित मिश्रा का शिकार बने। भारत के रविंद्र जडेजा ने केवल 21 रन देकर 5 और आर अश्विन ने 39 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले भारत की दूसरी पारी पूरे 200 रनों पर समाप्त हुई। चेतेश्वर पुजारा ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 153 गेंदों पर 77 रन बनाए। उनकी पारी इस मैच में निर्णायक साबित हुई। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने 61 रन देकर 4 और इमरान ताहिर ने भी 48 रन देकर 4 विकेट झटके। इस शानदार जीत के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने चर्चा में रही पिच का बचाव करते हुए कहा,
सीधे बॉल छोड़े गए, सीधे बॉल पे एजेस लगे, तो वो बैट्समैन की मिस्टेक थी। विकेट का उसमें इतना रोल नहीं था, तो जैसा मैंने बोला कि मैं उसको ज्यादा बढ़ावा या हाइप नहीं देना चाहूँ।
वहीं टेस्ट टीम में वापसी कर रहे और पूरे मैच में 8 विकेट झटक कर मैन ऑफ द मैच बने रविंद्र जडेजा ने जीत का श्रेय स्पिनरों को देते हुए कहा,
उनकी टीम में 3 ही प्लेयर जो 5 या 6 टेस्ट मैच इंडिया में इससे पहले खेले, ज्यादातर जो 11 प्लेइंग 11 थे सबके एक एक मैच ये पहला मैच था। तो मेरे ख्याल से वो भी एक चीज हो सकती है कि उनको पता नहीं था कि विकेट कैसे होगा, कितना टर्न होगा, कितना बॉल सीधा रहेगा।
उधर कल डबलिन में भारत के जाने माने मुक्केबाज और बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह अपने दूसरे पेशेवर मुकाबले में ब्रिटेन के डीन गिलिन के खिलाफ मुक्केबाजी रिंग में उतरे।
प्लीज वेलकम फ्रॉम दिल्ली इंडियाज फेवरेट बॉक्सिंग सब विजेंद्र सिंह।
और रिंग में उतरते ही पहले ही राउंड में विजेंद्र सिंह ने अपना जोरदार स्ट्रेट पंच जमाते हुए गिलिन को गिरा दिया और उसके बाद तो उन्होंने दनादन मुक्कों की बौछार करते हुए गिलिन को रिंग में लगी रस्सियों पर झूलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबला अपने नाम किया। तो विजेंद्र सिंह ने अपने दूसरे मुकाबले में भी अपने विरोधी को नॉकआउट किया।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक बार फिर प्रमुख समाचारों का प्रगति सक्सेना से।
बीबीसी समाचार। बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज दोपहर तक आ जाएंगे। इस मतगणना में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 3,450 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। म्यांमार के लोग आज मतदान की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यहां 50 साल से भी ज्यादा पुराना सैन्य शासन खत्म हो जाएगा। बुरुंडी की सरकार ने बंदूकधारियों से अपने हथियार छोड़ने की जो समय सीमा रखी थी वो बीत चुकी है। बर्लिन में एक आप्रवासी विरोधी जुलूस में बाधा डालने वाले प्रदर्शनकारियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस जुलूस को रोकने की कोशिश करने वाले करीब 40 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में पिछले हफ्ते एक नाइट क्लब में लगी आग से घायल 9 और लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 41 हो गई है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने दोनेस्क शहर के पास रूस समर्थक विद्रोहियों से मुठभेड़ के महत्वपूर्ण ठिकाने से 82 मिलीमीटर कैलिबर की मोर्टार्स को हटा लिया है। इससे पहले रूस समर्थित बलों ने ये घोषणा की थी कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी तोपों को हटा लिया है। सितंबर से दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर युद्ध विराम लागू किया गया है, हालांकि मुठभेड़ की छिटपुट घटनाएं होती रही हैं। ब्राजील के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को एक खदान में टूटे दो बांधों के बाद से 28 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।